हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मिस्टर खन्ना भले ही कोमा में थे, लेकिन फिर भी करण को पता था कि वो उसकी सारी बातें सुन सकते थे। इसलिए अपनी माँ की सारी बातें उनके सामने बोलकर करण को बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि पिछले एक साल से जो बोझ उसने अपने दिल पर रखा हुआ था वो आज उतार कर उसके आंसुओं के साथ बह गया है। फिर करण ने अपने आंसू पोंछे और वहां से उठा, लेकिन जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा उसकी नज़र वहां पर खड़े हुए किसी पर पड़ी। उसकी आंखों में भी आंसू थे और वो अंदर की तरफ ही देख रहा था। करण को लगा शायद वो अभी ही वहां पर आया होगा, इसलिए वो थोड़ा सा चौंकते हुए बोला, अरे ऋषभ, तुम यहां? ऋषभ ने बिना किसी भाव के कहा, क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप, और मैं यहां नहीं आ सकता क्या? करण ने बात को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा, अरे नहीं, बस रॉकस्टार आरके यहां पर देखने की उम्मीद नहीं थी। अपने दोनों हाथ सामने की तरफ बांधकर एक आईब्रो उठाकर शक भरे अंदाज से उसकी तरफ देखते हुए ऋषभ ने कहा, उम्मीद तो मुझे भी यहां पर आपको देखने की नहीं थी, और जो कुछ भी अभी अपने पापा से बताया। ऋषभ के इस सवाल पर करण थोड़ा सा हकलाते हुए बोला, क्या क्या बताया मैंने? कुछ भी तो नहीं बताया, और मिस्टर खन्ना तो कोमा में है, उनसे मैं क्या बता पाऊंगा? क्या बोल रहे हो तुम? मैं तो बस ऐसे ही अपने चेकअप के लिए आया था। और ऋषभ की बातें सुनकर करण समझ गया कि जरूर ऋषभ ने कुछ तो सुन लिया है, इसलिए वो इस तरह से उससे नजरें चुरा रहा था जैसे कि उसकी आंखों में देख लेगा तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। ऋषभ उसे हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा करता हुआ बोला, रहने दो जीजू, मेरे सामने तो मत ही करो आप अपना ये नाटक। वैसे भी मैंने सब कुछ सुन लिया है, और मुझे पहले से भी पता था आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते हो। थैंक्स, आपने हमारी फैमिली के लिए इतना सब कुछ किया, और यहाँ पर मेरे पापा के पास भी मुझसे पहले से ही बैठे हुए हो, जबकि मुझे यहाँ पर होना चाहिए उनके बेटी को। लेकिन जैसे कि पापा बोलते थे मैं बिल्कुल नालायक हूँ, सच ही कहते थे वो। करण तुरंत ही उसकी बात काटते हुए बोल पड़ा, नहीं ऋषभ, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कोई भी तुम्हें नालायक नहीं समझता, और तुम तो इतने लायक हो, इतने टैलेंटेड हो कि कितने लोग अब तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारे काम को भी। और तुमने जो कुछ भी सुना वो, ऋषभ उसके सामने आकर खड़ा होता हुआ बोला, बस करिए आप, मुझसे अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। लेकिन बस ये पता नहीं चला कि आखिर शिवीदी और काव्या को खतरा किससे है, और क्या हम सामने से उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते? करण ने ऋषभ को समझाते हुए कहा, थैंक यू सो मच, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है, और वैसे भी ये तुम्हारी नहीं मेरी भी फैमिली है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी हमें यहाँ पर ये सारी बातें करनी चाहिए, इसके लिए बाद में मिलते हैं कहीं किसी सेफ प्लेस पर। इतना बोलकर करण वहां से जाने लगा तो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए ऋषभ ने कहा, वैसे जीजू, आपके लिए मैं हमेशा ऋषभ ही रहूंगा, बिल्कुल पहले वाला, रॉकस्टार आरके लोगों के लिए हूँ, लेकिन फिर भी क्या फ़ायदा जब अपनों से ही दूर हो गया हूँ, बट हम अब टच में रहेंगे ना हमेशा। ये बात बोलते हुए ऋषभ काफ़ी इमोशनल हो गया, तो करण ने उसे गले से लगा लिया, क्योंकि इस वक्त वहां पर उस हॉस्पिटल रूम में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। ऋषभ के पापा मिस्टर खन्ना है, लेकिन वो कोमा में थे, और उनके सामने तो वैसे भी करण ने सारी बातें बोल दी थी, तो करण भी ऋषभ के गले लगा और उसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। आज पूरे एक साल के बाद ही वो इस तरह ऋषभ से गले मिल रहा है। वो दोनों कई बार पहले मिल चुके हैं, लेकिन उनके बीच बात नहीं हुई। हाँ, ऐसी कोई दुश्मनी या बहस भी नहीं थी, लेकिन बस एक अजीब सी दरार आ गई थी जो शायद आज भर गई थी। करण की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन किसी तरह से उसने खुद को नॉर्मल किया और फिर ऋषभ से दूर होते हुए बोला, अपनी बहन से कुछ मत बोलना अभी तुम इस बारे में, क्योंकि ये सब जो कुछ भी है पिछले एक साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ और नहीं चाहता कि वो सब बर्बाद हो जाए। आई होप तुम समझोगे, ऋषभ ने धीरे से अपना सिर हिलाकर कहा। हाँ बिल्कुल मैं समझता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे पूरी बात जाननी है, और इसमें मैं आपकी जो भी मदद कर पाऊँ मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले की तरह आप दोनों साथ में रहें। करण उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछने लगा, दोनों नहीं तीनों, मेरी काव्या को भूल गए क्या तुम? और हम तीनों तो जल्दी ही साथ होंगे, लेकिन तुमने अपनी लाइफ का कुछ सोचा या नहीं? अब तो इतने फेमस और सक्सेसफुल हो, ऑलमोस्ट सब कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में, जो भी तुम्हारा ड्रीम था, तो फिर लाइफ पार्टनर का सोचा है या नहीं? करण ने जैसे ही ये सवाल किया, ऋषभ की आंखों के सामने एकदम ही समर का चेहरा आया। उसके अलावा वो और किसी के बारे में सोच ही नहीं पाया, क्योंकि इन पिछले एक साल में चाहे कितने ही लोगों ने उसे अप्रोच किया हो, या फिर डेट के लिए कितने ही लोगों ने उसे प्रपोज किया हो, यहाँ तक कि कंपनी ने भी करियर में हेल्प के लिए उसे किसी फीमेल स्टार के साथ रिलेशनशिप में आने की सलाह दी हो, पर वो हर बार हर किसी को बस मना ही करता गया, क्योंकि वो अपनी लाइफ में किसी को भी परमानेंट आने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि उसने वो जगह पहले ही समर को दे दी थी। समर चाहे उसे कभी भी प्यार ना करे, चाहे वो स्ट्रेट हो और उसे लेकर कभी ऐसा फील ना करे जैसा वो करता है, लेकिन पता नहीं है क्यों पिछले एक साल में लाख कोशिश के बावजूद भी ऋषभ किसी और के बारे में नहीं सोच पाया है। उस दिन के बाद समर और उसकी कोई मुलाकात भी नहीं हुई। हाँ, ऋषभ ने ही कई बार उसे रास्ते में देखा है, लेकिन सिर्फ दूर से। उसके सामने जाने की ऋषभ की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से समर ने उसे रिजेक्ट किया था वो उसे आज भी याद था। ये सब कुछ सोचते हुए ऋषभ एकदम ही अपने अलग ख्यालों में खो गया और थोड़ी देर तक उसने कुछ नहीं बोला तो करण ने उसके चेहरे के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ, इतना किसके बारे में सोच रहे हो? पक्का कोई तो है लाइफ में, है ना? है नहीं था, पूरी तरह से तो नहीं, ऋषभ उसी तरह ख्यालों में खोए हुए एकदम से बोला। और उसके लिए बात सुनकर करण काफी कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगा। करण ने थोड़ी शरारत से पूछा, क्या मतलब है इस बात का? ऐसा भी कौन है? कौन है वो स्पेशल गर्ल जिसके ख्यालों में तुम इस तरह से खो गए हो? ऋषभ थोड़ा सा झेंपते हुए बोला, अरे नहीं नहीं जीजू, कोई भी नहीं है। सच कहूं तो काम में और किसी चीज का वक्त ही नहीं मिलता, और मैंने अभी सोचा भी नहीं है। वैसे भी मुझे रिलेशनशिप और इन सारी चीजों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऋषभ की ये बात सुनकर करण थोड़ा सा सोचते हुए बोला, लगता है एक तरफा प्यार में दिल टूटा है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो जरूर आएगा लाइफ में जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना होगा। करण की इस बात पर ऋषभ हल्के से मुस्कुराया, और वो जवाब में कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही बाहर की तरफ से उस हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खुला। नर्स वहां पर आई और उन दोनों को एक साथ वहां पर देखकर नर्स ने कहा, पहले ही बोला था ना मैंने कि एक एक करके ही पेशेंट से मिलने जाना है, फिर आप दोनों एक साथ यहाँ पर क्यों खड़े हैं? और वैसे भी विजिटिंग आवर खत्म हो चुके हैं, तो अब आप दोनों जा सकते हैं। नर्स की बात सुनकर करण ने कहा, हाँ मैं बस चाह ही रहा था, लेकिन ये उनके बेटे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही आए, इसीलिए इन्हें थोड़ी देर के लिए मिल लेने दीजिए अपने पापा से।
करण ने ऋषभ की तरफ इशारा करते हुए ये बात कही तो फिर नर्स ने एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा और बोली, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट हैं आपके पास। इतना बोलकर वो वहां पर साइड में खड़ी होकर अपना काम करने लगी। ऋषभ भी अपने पापा के पास बैठा और करण जब तक दरवाजे की तरफ बढ़ गया था वो दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर वहां पर ही रुक गया। और फिर उसने मुड़कर ऋषभ की तरफ देखा, वो धीमी आवाज में कुछ बोल रहा था जो कि करण को सुनाई नहीं दिया। लेकिन फिर करण वहां पर ज्यादा देर नहीं रुका और वहां से निकल गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कोई भी उसे और ऋषभ को साथ में देखे। वो दोनों ही फेमस पब्लिक फिगर हैं और करण की कंपनी से रिलेटेड भी, इसीलिए उन दोनों को साथ में देखकर न्यूज बनते देर नहीं लगती। इसीलिए ही करण ये रिस्क नहीं लेना चाहता था और वो वहां से निकलकर सीधा वापस अपने ऑफिस आ गया। दूसरी तरफ ऋषभ भी कुछ देर के बाद अस्पताल से निकला और उसे पता था करण जरूर वहां से चला गया होगा, और अब उसे थोड़ा रिग्रेट हुआ कि उसने करण का नंबर भी नहीं लिया, वो बाद में उससे कॉन्टैक्ट कैसे करेगा। ये बात सोचते हुए वो अपनी कार में आकर बैठ गया। वो खुद ही ड्राइव करके यहां तक आया था, और अस्पताल से बाहर निकलने से पहले नर्स ने उसे बताया कि उसके पापा की तबीयत अब पहले से काफी ज्यादा स्टेबल है, और अगर वो इसी तरह रिकवर होंगे तो 1-2 हफ्ते या महीने में उन्हें होश भी आ सकता है और वो कोमा से बाहर आ जाएंगे। ये सुनकर ऋषभ को काफी अच्छा लगा। ऋषभ अभी अपनी कार स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ। उसने अपने कान में ब्लूटूथ लगाया और कॉल रिसीव करके बात करने लगा। ऋषभ, फोन कॉल पर नहीं, अभी आज के लिए काफी लेट हो गया है, वो शेड्यूल कैंसिल कर दो। हाँ हाँ, जो भी जितने भी काम है आज मैं कहीं भी नहीं जा रहा, मैंने कहा ना फाइनल है। रूही, तुम्हें कम समझ में आता है क्या? ऋषभ फोन पर चिल्लाता जा रहा था, लेकिन तभी दूसरी तरफ से उसकी असिस्टेंट रूही ने कुछ कहा तो ऋषभ ने एकदम गुस्से में कसकर अपने स्टेयरिंग पर हाथ मारा और बोला, अच्छा ठीक है, इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं यहाँ से सीधा वहां पर ही चला जाता हूँ, लेकिन तुम रोना बंद करो, और मैंने पहले ही बोला था अगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया तो फिर मैं सीधे मना कर दूंगा, और इस बार मैं तुम लोगों से नहीं सीधे उन लोगों से ही बात कर लूंगा। दूसरी तरफ से उसकी असिस्टेंट कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही गुस्से में ऋषभ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और ब्लूटूथ भी उतारकर साइड की सीट पर ही फेंक दिया, और फिर दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ते हुए माथे पर फैले अपने लंबे बालों को पीछे किया, जिससे कि अब उसका काम और हैंडसम फेस बहुत ही साफ नजर आ रहा है। उसकी हल्की बियर्ड भी है जो कि उसके रॉकस्टार लुक को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बना रही थी। उसकी आंखें लाइट ब्राउन कलर की जो शीशे से आई हुई धूप पड़ने पर चमक रही हैं, और उसने इस वक्त व्हाइट शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स पहनी हुई है, एकदम ही कैजुअल कपड़े पहने हैं, फिर भी वो काफी हैंडसम लग रहा है। लेकिन उसकी नाक पर थोड़ा गुस्सा और चेहरे पर थोड़ी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। एक गहरी सांस लेते हुए उसने काम करने की कोशिश की और फिर कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। उसके चेहरे की फ्रस्ट्रेशन से साफ पता चल रहा है कि वो किसी ऐसी जगह जाने के लिए निकला है जहां पर वो शायद जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ रहा था। टू बी कंटिन्यूड। क्या लगता है आप लोगों को, ऐसी कौन सी जगह पर जा रहा है ऋषभ जहां पर वो जाना नहीं चाहता, और क्या ऋषभ करण मिलकर कर पाएंगे इन सारी मुसीबत का सामना, और क्या शिविका को भी पता चलेगा इस बारे में?